better two chairs, sitters, they should come inside, not in front of Thakurji. Otherwise, aparadh.
Or they are they can sit there.
No, they can sit in this side. better sit there. Oh, that there you can, in front you can sit. Harjan Maharaj koi. Vasena? Okhane kani baso? Education. Ar Haridas? Haridas? Edga? Sa, someone lukiye baso baso. Odige baso, Raghuna... Oye Maharaj er samne okhane. Edige chale. Harjan Maharaj, odige ja. Mata Maharajer. Roz Bhushpa.
Agyanati Mirandasya Gyananjan Salakaya Chakshurun Militam Yenam Tasmai Sri Gurave Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayvacha Patitanam Pamanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrije Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadadaya Krishnaya Krishna Tadbhaktaya Namo Angasyamalim Chata Abhiravito Mandit Tendi Varam Jadanja Budaroch Sang Vidadatam Pattam Barasya Vindaranya Nivasinam Hridila Saddama Piramodaram Radha Skanda Niveshito Jalakujam Nayendama
शास्त्रों के अनुसार अथवा हमने जो गुरु वर्गों से सुना है उसके अनुसार में हमसे अधिकार में जो उन्नत वैष्णव है वे हरि कथा कर रहे हैं तो उस समय वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा या नवदीप धाम की परिक्रमा छोड़ करके हरि कथा श्रवण करने से मंगल होता है शास्त्र ऐसा कहते हैं ये सुविधा नहीं मिलती गिरिराज गोवर्धन जी पीछे कृपा करेंगे कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं किंतु वैष्णव लोग गुरु हरि कथा के माध्यम से चित्त को शोधन कर देंगे गिरिराज नहीं शोधन करेंगे उसमें मायावादी इत्यादि कितने लोग परिक्रमा करते हैं क्या होता है शोधन होता है वही विषय वासना की चीजें मानते हैं उनका चित्त शोधन नहीं होता है इसीलिए शास्त्रों में देखा जाता है कि सब लोगों ने वृत्तासुर इत्यादि के उपाख्यान में ममोक्ता श्लोक जनेषु भवति स्वकर्म भी तन्माया या तो कहते हैं कि संघ हमको मिले जहां पर कि वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं हमको श्रवण करने का सुयोग मिले। ऐसे श्रीमद्भागवत में बहुत जगह ऐसे प्रसंग मिलेंगे चैतन्य। इसलिए आप लोग यहां पर हरि कथा का सुयोग है, वहां पर सब कुछ छोड़ करके हरि कथा सुने तत्पश्चात परिक्रमा करें चाहे जो कुछ करें, ऐसा सुयोग सब समय नहीं मिलता। कितनी सुंदर 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 हरि कथाएं होती हैं जो कि सब समय सुलभ नहीं होती है। इसलिए आप लोग इसके तरफ में ध्यान दे करके हरि कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त करें। इसी से चित्त संशोधन होकर के प्रेममयी भक्ति ब्रज भक्ति प्राप्त हो सकती है। आज शुभ तिथि है, आज के दिन कार्तिक महीने में पूज्य व्रत के समय में आज के दिन प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव हुआ, और साथ ही साथ दूसरे वर्ष में पहले वर्ष में पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी का और दूसरे वर्ष में परम पूज्यपाद वामन महाराज जी का तिरुभाव हुआ। जब मैं मठ में आया तो हमारे शिक्षा गुरु वामन महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी थे, मैं उनको उसी प्रकार से सम्मान करता था। वामन महाराज जी हमारे लिए जब मठ घर छोड़ करके आया सारी व्यवस्था वो करते थे मेरे लिए, और मैं प्रचार के लिए भिक्षा इत्यादि के लिए पूज्यपाद विक्रम महाराज जी के साथ में सर्वत्र जाया करता था। कीर्तन इत्यादि त्रिविक्रम महाराज जी ने मुझको करना सिखाया। वामन महाराज जी हमारे गुरु जी के अंतरंग सेवक और परिकर थे, उनकी कलम थे। बिना वामन महाराज जी के गुरु जी कुछ लिख पढ़ नहीं सकते थे। परिक्रमा के भीड़ में जहां पर कि सब लोग आए हैं गुरु जी से मिल रहे हैं, वामन महाराज जी उपस्थित होंगे, जो पत्रिका के लिए संपादकीय चाहिए, सब ठीक हो गया है और कल ही जाना है निसिंघपल्ली, अभी तक तैयार नहीं है, बस अच्छा अच्छा लिखो, और सब लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं और उसके बीच में लिखा बोलने लगे। और वामन महाराज लिखते थे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, वामन महाराज जी का लिखना इतना सुंदर था, स्वर्णाक्षर बहुत सुंदर लिखते थे और उसमें कोई भूल नहीं होती थी जो सुधार करने की जरूरत है। त्रिविक्रम महाराज जी की भी लिखावट पूज्यपाद वामन महाराज जी के समान ही थी, वैसे दोनों बहुत योग्य थे, हमारे ऊपर में बहुत उन लोगों की कृपा थी। विशेष करके त्रिविक्रम महाराज जी के साथ में मैं रहा अधिक, उन्हीं के साथ प्रचार इत्यादि में जाना इत्यादि सब कुछ, कभी कभी वाद विवाद भी होता और गुरु जी हमारा पक्ष लेते थे, त्रिविक्रम महाराज जी कहने जाए ये भावुक है। वामन महाराज जी से हमारा कभी भी वाद विवाद नहीं, त्रिविक्रम महाराज जी से तो सब समय होता था, किंतु पूज्य बात वामन महाराज जी से कभी नहीं हुआ। गुरु महाराज जी के बाद भी सुदीर्घ 35 करीब 35 36 वर्ष तक गौड़ीय वेदांत समिति ठीक रूप से चले, सब लोग मिल करके थे, विशेष करके हम लोग तीन आदमी पूज्यपाद बामन भट्ट विक्रम महाराज और मैं शुरू से ही गौड़ीय वेदांत समिति के हम लोग एकनिष्ठ सेवक थे। तो शुरू से ही और गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के बाद 1968 से लेकर के 1904 तक, चार में पूज्यपाद बामन भी कम महाराज चार तक कितना हुआ 35-36 वर्ष गौड़ीय वेदांत समिति सुस्त रूप से चली। क्यों चली? त्रिविक्रम महाराज जी निष्काम थे, उनको कोई पद की रुपए पैसे की प्रतिष्ठा की लालसा नहीं होती, निष्काम थे इसलिए चले। दूसरे पूज्यपाद बामन महाराज जी परम सहिष्णु थे, परम सहिष्णु और गंभीर थे, यदि कोई बात होती उनके सेवक भी उनके पास कुछ कहते कदे जाओ नारायण महाराज जी के पास में जाओ, मैं नहीं जानता, सब कुछ हमारे ऊपर में छोड़ देते। इसलिए समिति अच्छी तरह से चली, कुछ लड़के भी थे उद्धत बामन महाराज जी के रहते सिर नहीं उठा सके, किंतु इन दोनों के बाद में कुछ सिर उठाना आरंभ किया। मैंने सोचा बंगला थे, अच्छा तो उस समय मैंने आमी क्या बोल रहा था, तो पूज्यपाद बामन महाराज बहुत सही सुनो, बहुत सब जो कुछ होता है कह देते जाओ नारायण महाराज जी के पास। आचार्य थे, सब कुछ उनके हाथ में था, किंतु बिना हम लोगों के परामर्श से और हम भी कुछ भी करते देखते जब बामन महाराज जी से प्रसन्न होंगे कि नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनका हृदय का भाव जान करके पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी से परामर्श लेकर के सब कुछ करता था कि बामन महाराज जी एमन सहिष्णु छिलेन, हमार शिक्षा गुरु छिलेन त्रिविक्रम महाराज जी। तो आज के ताहादे तिरुभाव तिथि हमें ताहादे चढ़ने ते कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम की एंगु पुष्पांजलि अर्पण कर छी, तारा जेखाने थे कहो ठाकुर हमार ऊपर ते कृपा करूं अपना देर ऊपर ते कई बोले हमें संक्षेप से वक्त समाप्त की परे आर कुछ न बोल एखन तारे एकांत शिष्य
गुरुवै गौरचन्द्राय राधिकाय जनाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भगवते नमो नमः। Therefore, what we have heard from Shastra and Guru, according to their conception, that when a high class Vaishnava is speaking Harikatha, that time we should think it is better not to perform parikrama of Govardhan or Navadvip or anything.
At the same time.
Because Sri Giriraj Govardhan will only give mercy after the Vaishnavas have given us mercy. Giriraj Govardhan will not speak any instruction to us. Therefore, our hearts will not be purified so rapidly. Therefore, better for us to stay in Harikatha than to perform any other activity at that time. Otherwise, we see so many Mayavadis and others are staying in Govardhan, but their situation is not changing. Therefore, Bhikkhusura in the Srimad Bhagavatam, he prayed, Manuttama Shoka Jalesu Satya. He also prayed for the chance to have the association of the Vaishnavas and to hear their kirtan. Therefore, whenever we get a chance for satsanga kirtan, we must take that in precedence over any other activity. Then we should leave everything for Harikatha, and afterwards we can perform parikrama or any other activity. By Harikatha and satsanga, you can get Raja Bhakti. Today is also a very special day. In this Kartik month, in this Ujjabrat, today is the disappearance of Uttivila Guru Silvakran Bhavan Maharaj. And exactly 1 year previous to that, was the disappearance of Pujapad Chidanisami Silvakran Chidakar Maharaj. The Bhagavad Gita was saying that when he first came to the mark, both Pujapad Bhavan Maharaj and Pujapad Chidakar Maharaj were Shiksha Gurus. Especially Srila Bhavan Maharaj, when he came to the mark, then he arranged everything for Gurudev, where to stay, how to eat. And I was always sent with Pujapad Chidakar Maharaj on preaching and correction, and it was him who taught me how to perform kirtan. Srila Bhavan Maharaj had many specialities, but especially he used to collect for the Gaudiya Patrika and Bengali magazine. Even that time it was Navadvip Parikram, and the next day we were going to the Singapali. Good as even today I can remember. That time we have to do some article, therefore Pandurev would call Srila Bhavan Maharaj. Oh, right. And in the midst of everyone, even though everyone was talking, blah blah blah, Srila Pujapad Pandurev would speak, but Srila Bhavan Maharaj would write. So his writing was so excellent in such great, perfect language, even there was no need for any editing, it would directly go to the press. And Chidakar Maharaj also had the same ability. But Gurudev said, always, especially he was so much together with Pujapad Chidakar Maharaj. And when there was any argument, there was always some argument between them, then Pam Gurudev would always take my side.
Debate.
Take Gurudev's side. But he would always not take the side of Pujapad Chidakar Maharaj. But with Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj, there was not so much this argument.
Debate.
Therefore, after Padma Guruji's disappearance, for 36 years, the Gaudiya Sridhi went in a very nice way. Because us three persons, Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj, Bhaktivinoda Chidakar Maharaj, and Gurudev, were together. And there was no self-interest. How the Gaudiya Sridhi was successful? Srila Bhaktivinoda Chidakar Maharaj was completely niskam. He had no desire for money, for disciples, or for name and fame. And Pujapad Srila Bhavan Maharaj was very, very humble and always giving so much respect to others as well as being very brave. Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj, even though he was acharya and everything was in his power, still if any disciple would come and ask any question about management or some complaint, then Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj would say, I don't know anything. You go to Srila Narayan Maharaj. There was a time when Pujapad Chidakar Maharaj and Pujapad Bhavan Maharaj was there, all disciples worked cooperatively and they kept their heads down. But as soon as they disappeared, some small boys raised their heads like they raised their heads and began causing disturbance. That is why for so long the Samiti, Gaudiya Samiti, went in such a nice way. Therefore today, on the disappearance of these two Mahapurushas, Gurudev saying, I am again offering millions of pranams and offerings at their feet that they may give mercy to me and to all of us.
श्रीमान परिव्राजक महाराज बामन महाराज एकांत सेवक छिले तार समय ते तिनी प्रचार इत्यादि विशेष करे अमर निर्माण कार्य इत्यादि जा किछु होय छे उखाने सब इनार माध्यमे ते सब पूरी होय छे इनी कुछ तार गुरु पाद पद में कुछ हरि कथा परिवेशन करे तार चरणे ते पुष्पांजलि अर्पण
ओम अग्गाल सिमरन्नस्य गणन्न सनादा सुप्सूरुमिलितं जनतस्मै श्रीगुरवे नमः वंशा बलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु हैवत पतितानं पावन भो वैष्णवेभ्यो नमः सर्वाग्रे मुदीरूपं हरद्वतम् श्रीमद्गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद अष्टतु श्रीमद्भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज श्री चरण सरदे आमार अनंत कृष्ण शासन प्रणति निवेदन करछि तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म विष्णुवाद अष्टतु श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण सरदे আমার অনন্ত বিশ্বাস সমন্ধে নিবেদন করছি তৎপশ্চাৎ পূজনীয় সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সবার চরণে যথাযথ ধন্যবাদ সমন্ধে নিবেদন করছি সবার কাছে কৃপা প্রার্থনা করছি আজ আমাদের পরম আরাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদ পদ্ম নিত্য লীলা কৃষ্ণ বিষ্ণুবাদ অষ্টতপুত্র শ্রীশ্রীম ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভ তীরভাবতিথি গুরু বৈষ্ণবের কৃপা বেঁধে রেখে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই এই জন্যে সর্বাগ্রে গুরুপাদ পদ্মের বন্দনা করা একান্ত কর্তব্য তাই আমি করছি তার অহিতকী প্রার্থনা জানতে পরে তার চরণে নিবেদন জানাচ্ছি তিনি আমার উপরে কৃপা বর্ষণ করুন অহিতকী গুরুপাদ পদ্ম তিনি এই জগতের তিনি অপ্রাকৃত জগতের তিনি স্বরূপত মঞ্জরী তিনি এই জগতে আসেন আমাদের মতো বদ্ধজীবকে কৃপা করে ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর জন্য এই জগতে আসেন এবং নিজে আচরণ করে তিনি এই জগৎকে জানিয়ে দেন যে এইভাবেই ভগবানের সান্নিধ্যে যেতে হবে বিশেষ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেও দেখিয়েছেন কিভাবে উৎকণ্ঠা আকুলতা ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি এই জগতের মধ্যে দেখিয়েছেন দেখো বিরহ কাহাকে বলে এই বিরহ যদি না হয় তাহলে ভগবানের কৃপা আমরা লাভ করব কি করে এটা বিরহ মানে ভগবানের কৃপা লাভ করে একটা ম্যাগনেট আকর্ষণ শক্তি এই বিরহ কার হবে কে বুঝবে এই বিরহের কথা গুরু মহারাজ বলতেন সরি কথা বলতে গিয়ে বলতেন যে যে গায়ের তো গেয়ে গেল যার ফাটলো তার ফাটলো গুরু মহারাজ বললেন যে বিরহ কথাটা খুবই ছোট কথা কিন্তু বিরাট বিরাট এর ভিতরে অনুভূতির জিনিস নিহিত আছে বিরহ মানে যিনি গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে যিনি সম্পর্কযুক্ত সভা নিষ্ঠা যুক্ত তিনি গুরুদেবের প্রশ্নকরের বিরহের মর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সুতরাং গুরু মহারাজের তো সেবা করার সেইরকম সৌভাগ্য আমার হয়নি, ওনার কাছে সেইরকম ভাবে অভিজ্ঞতা শোনারও সুযোগ হয়নি। যতটুকু উনি কৃপা করেছেন ওইটুকু সম্বল নিয়ে এবং আপনাদের সকলের এই কৃপা ভিক্ষা করে আমার জীবনে কিছু যদি আমি করতে পারি তার জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। গুরুমহারাজ বলতেন যে দেখো, মঠবাস করতে হলে ওই দিক দিয়ে যাবে, যখন বাজার যাবে পরম পূজনীয় সিদ্ধান্তী মহারাজের মঠে, ওখানে একটু দর্শন করে আনবে। কি দর্শন করাবে? ওনার গেটে আছে
থাকা, কানে আঙুর,
মুখে এগুলো দেখবে তোমরা। পুরুমাকে বললাম যে এগুলো দেখার তাৎপর্য, পুরুষে বলে যে দেখো চোখ আসছে দেখবে, কিন্তু কিছু বলতে হবে না, কু দেখবে না আর কু শুনবে না। ভজন যদি করতে চাও তোমরা, ভালোটা দেখবে খারাপটা দেখবে না, আর মুখে ভালোটা গুণচিন্তন করার অভ্যাস করবে, বৈষ্ণবগণের ভুল ত্রুটি দোষ দেখার আদৌ চেষ্টা করবে না, তাহলে তোমরা ভজন করিতে পারিবে না। প্রায় বাজার যাওয়ার সময় ওগুলো দেখে দেখে যাই, আসার সময় দেখে দেখে আসি। তাই গুরুমানকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুমানা কু দেখব না আর কিছু বলব না, এটা কি করে হয়? বলছে ওইটাই তো হচ্ছে সাধন ভজনের প্রাথমিক অবস্থা। সুতরাং সহিষ্ণু, গুরু মহারাজ বলতে চাচ্ছেন যে সহিষ্ণুতা গুণ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা আমরা সাধন ভজন করতে যাচ্ছি। যদি সহিষ্ণুতা গুণ না থাকে তাহলে হবে না। গুরু মহারাজ বলছেন যে দেখো না, আমি কিছু এই যে গুরু হক অত সহজ, শুধু রোগী এসে প্রণাম করলো আমার শিষ্য হলো আমি গুরুদেব হয়ে গেলাম, এর যে ভিতরে কত যে জ্বালা তোমরা বুঝবে না। সুতরাং সহনশীলতা গুণ এটা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। গুরু মহারাজের নিজের জীবনীতে নিজেই উনি বলছেন মাঝে মাঝে কলকাতা মঠের মধ্যে, বলছেন যে আমি যখন মঠে আসি তখন ওই বাচ্চা ছেলে আর কেউ ছিল না, আমি শুধু ছিলাম আর একজন ওদের ছিল। আমি সব প্রশ্ন করে সেবা করেছি, প্রত্যেকের ঘটি বাটি যারা প্রাচীন বৈষ্ণব তাদের ওগুলো মেরে দিতাম, জল দিতাম, বিনিময়ে ওরা আমাকে স্নেহপূর্ণ একটা করে সুরক্ষিত আবার লজেন্স দিত। এইরূপ ভাবে আমি প্রচুর শ্লোক ওদের মাধ্যমে আমি শিক্ষা লাভ করেছি। তো সুতরাং সেবাই গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা লাভের একমাত্র পথ। সেবার দ্বারা আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা আশীর্বাদ পেতে পারি। গুরু মহারাজের নিজের জীবনীতে উনি দেখিয়েছেন, আর সহনশীলতার গুণ তিনি তার জীবনে তিনি দেখিয়েছেন। এমনকি গুরু মহারাজ বলতেন যে এই সুন্দরবনে আমরা যখন যেতাম, সুন্দরবনে প্রচারে কেউ যেতে চাইত না, কারণ একটুখানে কষ্ট। এখন ইদানিং তো অনেক সুবিধা হয়েছে, কিন্তু আগে এগুলো কিছুই ছিল না, খুব কষ্ট করে যেতে হতো। আর গুরু মহারাজ যেতেন আর তখন ছিল লঞ্চ আর নৌকা ছিল, এখন তো মেশিন লাগানো হয়েছে, তখন মেশিন লাগানো ছিল না। লঞ্চে গেলে অর্ধেক অন্ততকে 30-40 ফুট
হাঁকিয়ে দাঁড় করে দেয়, কারণ পারে যেতে পারে না, লেগে যায়। ওইখান থেকে সিঁড়ি মেয়ে নামতে হয়, নেমে এতটা করে কাদা আর জল। গুরুমার ওর মধ্যে অনেকে এসে শিষ্যরা ওখানে ছিলেন, অনেকে ওরা ধরতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে ওরাও ওই কাদার মধ্যে নেমে যেতেন। গুরুমার ওইটুকু ভয়ে কষ্ট করে প্রচার করেছিলেন। গুরু মহারাজ তিনি স্মৃতিধর ছিলেন, যা কিছু তিনি শ্রবণ করেন তিনি নিজের হৃদয় পটে ওটা অঙ্কিত করে রাখতে সমর্থ ছিলেন। এই জন্য গৌড়ীয় সবাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সবাই বলতেন যে উনি হচ্ছেন গৌড়ীয় মঠের ডিকশনারি। গুরু মহারাজকে আমি যতদিন ছিলাম, আমি 70 এসেছি মঠে, কতদিন পর্যন্ত গুরু মহারাজের সান্নিধ্যে যতটুকু পেয়েছি সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ, কোনদিন কাউকে রাগ করার কোনদিন দেখিনি গুরু মহারাজকে। একটা রাগ করে দেখি তু বলবেন, শাসন করবেন না, তা করবেন, শাসন করার ভার দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, পুজো ত্রিবিক মহারাজের উপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজন হচ্ছেন গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভ। মহারাজ বলছেন যে আমি দীক্ষা দিলাম, পালন করার ভার আপনার, আর ত্রিবিক্ষ মহারাজ শাসন করবেন। প্রথম প্রথম ত্রিবিক্ষ মহারাজের শাসনটা আমরা অতটুকু বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি যে বৈষ্ণবগণের শাসন মানে ওটা স্নেহ। গুরু মহারাজের পরে ব্যাখ্যা করে বুঝেছেন যে না না, বৈষ্ণবগণের শাসনটা শাসন নয়, ওটা হচ্ছে স্নেহ। যদি শাসন করা না হয় না, তাহলে তার কিছুতেই মঙ্গল হতে পারে না। যিনি শাসন স্বীকার করবেন না তার মঙ্গল কোথার থেকে হবে? সুতরাং শাসনটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরবর্তীকালে আমরা ওটা আস্তে আস্তে ভজন সাধন করতে গেলেই ওটা উপলব্ধি হয় যে গুরু বৈষ্ণবগণের শাসনটা কি ধরনের স্নেহ। আমরা যতগুলো উদাহরণ দেখতে পাই সবগুলোর মধ্যে নিহিত আছে যে সুখতার পর্যন্ত। যেমন শিবাস ঠাকুর রথের সময় প্রতাপরুদ্র রাজার একটুখানে আড়াল হল, আর বারবারঙ্গা দিয়ে ধাক্কা মারছেন যে তুমি একটু সরে যাও, আমি রাজার তো কর্মচারী, আমার তো কর্তব্য আছে একটুখানে ওনার সুবিধা করে দেওয়ার। এরকম 2-3 এরকম করাতে তিনি পিছন ফিরে এক স্থাপন মেরে দিলেন। উনিও আবার একটু তাকে সত্য নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, তিনি বলে খবরদার তোমার কর্ম সৌভাগ্য, বৈষ্ণবগণের হস্ত স্পর্শ পেয়েছ। এর দ্বারা বুঝে যায় যে যেমন আরম্ভ সিংহ প্রত্যেকটা উদাহরণ আছে আমাদের বৈষ্ণবগণের শাসন, ওটা হচ্ছে স্নেহ। এটা আমরা সহজে প্রাথমিক স্তরে বুঝতে পারি না, কিন্তু এটা স্নেহই বটে। তো গুরু মহারাজ তিনি সহনশীলতা গুণের দিক দিয়ে তিনি চরম অবস্থায় ছিলেন, আর কাউকে তিনি শাসনও করতেন না। মৃদু ভাষায় তিনি বলতেন, বাবা তোমাদের এটা করলে ভালো হয়, এটা করলে মন্দ হতে পারে, তবে গুরু বৈষ্ণবগণের কাছে জিজ্ঞাসা করে তোমরা যা শুরু করার পর। সবসময় আমাদেরকে ফেলে যেতেন মহারাজের কাছে, আমরা তাই মহারাজের সাথে, আর মহারাজা আমাদেরকে নিজের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। গুরু মহারাজ তিনি তো দীক্ষা দিয়ে তিনি তো সেই সময় আমাদের গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অত আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, এই জন্য গুরু মহারাজ সবসময় তিনি প্রচারে যেতেন, আর আমরা আমাদেরকে রেখে দিতেন, আর বলতেন যে তোমাদেরকে প্রতিপালন করবেন মহারাজ। মহারাজ 3 ক্লাস করে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং গুরু মহারাজ তিনি অপ্রাকৃত বস্তু, এই জগৎ তিনি শোধন করার জন্য তারা এই জগতে এসেছিলেন। আর তিনি এক সময় পরম গুরু মহারাজ আদেশ করেছিলেন কলকাতার কাজ সেরে তিনি ওই কৃষ্ণচন্দ্রপুর যাবেন, ওখানে আমাদের এক পিসিমা আমাদের ঠাকুমা হয়, হ্যাঁ, মোরা বলছিলেন ওনার কাছে কিছু আর্থিক নেওয়ার জন্য। তিনি গিয়েছেন, আর ট্রেনের একটু লেট ছিল, যেতে যেতে রাত্রে 12-1 বাজে, জয়নগর থেকে নেমে তিনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। আর ওখানে ওই মোড়ের মধ্যে একটা ভূতের আড্ডা ছিল। হ্যাঁ, তো সব ভূতগুলো মানে টিপটিপ করে লাইট জ্বলছে। হ্যাঁ, তখন ওরা গুরু মহারাজ তো বুঝতে পেরেছেন যে এখানে ভূতের আড্ডা আছে, যা কি আর কি চিন্তা আছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে, হাতে ব্যাগ হাতে চলছে। এমন সময় কতগুলো ভূত এসে গুরু মহারাজকে ঘিরে ধরলেন। মহারাজ, হ্যাঁ, তুমি এখানে যেতে হবে, কি ব্যাপার? যেখানে একটা বিয়ে হচ্ছে, বিয়ে ভূতের বিয়ে। হ্যাঁ, এত আশীর্বাদ করতে হবে, গুরু মহারাজ এখন না বলবেন তাহলে ওরা তো আমাকে কিছু অনিষ্ট করতে পারে, ভূতের ব্যাপার। ঠিক আছে, চলো। এই জন্যই গুরু প্রশ্ন করে ওরা ভগবানের শরণাগত, ওরা ভগবানের নিজেদের, ওদের কি ভয়? যেখানে যাকে কেন সেখানে কাজই হচ্ছে তত জগৎ কল্যাণ করা, উদ্ধার করা। এই জন্য তিনি ভাবলেন যে আগে একটা সুযোগ এসে গেল, দেখি এটা কাজে লাগিয়ে দিই। তাই গুরুমার নির্ভয়ে চলে গেলেন সেখানে, আর গুরুমারকে একদম আদর অভ্যর্থনা করে ওরা বসালো চেয়ারের মধ্যে। এমন সময় সেই ভূতের কন্যা আসলো আর ভূতের জামাই এসে গেল। হ্যাঁ, বিয়ে টিয়ে হচ্ছে, ওদের ঘোড়ডোল বাজাচ্ছে, ওদের গান করছে, আবার মালা টালা দিচ্ছে। গুরুমারকে বললেন যে আশীর্বাদ করুন, গুরুমার আশীর্বাদ করে দেন। গুরু বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ কি রকম? গুরু বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ তোমার এই সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হোক, কখনো বলো না, তাহলে তোমার আত্মকল্যাণ হোক। কৃষ্ণ ভক্তির অস্তু, কৃষ্ণে মতির অস্তু, কৃষ্ণ ভক্তি হোক তোমার, এই তো বলবেন। গুরু মহারাজ সবাইকে বললেন যে তোমাদের সবারই কল্যাণ হোক, ঈশ্বরের কৃপা তোমাদের লাভ হোক। তারপর বিয়ে দিয়ে সে বলো, তারপর খেতে দিলেন। গুরু মহারাজ বলে আমি তো এত রাত্রি খাবো না কিন্তু। আচ্ছা, তাহলে আপনাকে ফল দিচ্ছি, এক ব্যাগ ফল ভর্তি করে দিয়েছেন। গুরু মহারাজ বলে নেব কি করে? বলে মহারাজ কোনো চিন্তা নেই, ভূতের ব্যাপার তো, তারপরে থেকে আপনার রিস্কে ডেকে নিয়ে আসবো। নিয়ে এসে রিস্কে চাপিয়ে দিলেন, ওরা ফেলে নিয়ে গেলেন সব, একদম বাড়িতে পৌঁছে দিলেন ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দিয়ে বললেন যে মহারাজ এখন আমি আসি। বলে হ্যাঁ, এবার আসতে পারবো বাবা, কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই সেই থেকে আর ওখানে আর কোনো ভূত নেই, উত্তর হয়ে গেলেন। এই জগৎকে ওরা পরিত্রাণ করার জন্যে ওরা এই জগতে আসেন। সুতরাং গুরু মহারাজ সুন্দরবনে গিয়েছেন, অনেকের বাড়িতে এক জায়গায় সুন্দরবনে তো সব ঘরগুলো নিচু, তা সব নিচু হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হয়। তো গুরু মহারাজ বললেন যে দেখ, এই সুন্দরবনে আসলে জন্মবিন্দনে শিক্ষা লাভ করতে হয়, যাদের উন্নত শীত থাকবে অভিমানে একবারে চরম অবস্থা, সে কখনো হজম করতে পারবে না। সুতরাং এই সুন্দরবনে আসতে হবে। সুন্দরবনে কাদা কাদাগুলো আছে, হ্যাঁ, কিচার, ওটা হচ্ছে ভক্ত, ওরা ভক্ত কাদা গুরুমান বলে। ওরা যতবার ধুই না কেন, ওই জল দিলে পরিষ্কার দেখায়, একটু পরে আবার শুকিয়ে আবার সাদা হয়ে যায়। বলছে যে এরা আর সাধু সঙ্গ থাকতে চায় না। সুতরাং গুরু মহারাজকে এক সময় আমরা বলেছিলাম যে গুরু মহারাজ অমুকে একটা ইয়ে করছে বলছে, এরকম ভাবে একটুখানি বদমাশি করছে, তা আপনি কিছু শাসন করতে পারবেন না? বলে পাগল, আমি শাসন করলে তো আমার উপরে সে রাগ করবে, হ্যাঁ, অপরাধ করে বলবে, তাহলে তার জীবনটা পারমার্থিক জীবনটা এক করে মেশ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সুতরাং শাসন করবে মহারাজ। হ্যাঁ, মহারাজের কাছে ঠেলে পাঠিয়ে দিতেন। এই জন্য গুরু মহারাজ গুরু বৈষ্ণবগণ চুপচাপ থাকা মানে এটাও একটা শাসন, কিছুই বলছে না, শুধু বাহাবা দিয়ে যাচ্ছেন, ওরাও কিন্তু বিরাট একটা শাস্তি। হ্যাঁ, এটা গুরু মহারাজ নিজে বলতেন। সুতরাং গুরু মহারাজের শ্রীচরণ কমলে তার অলৌকিক আরো অনেক কিছু লীলার কথা আছে জীবনের। এইগুলো পরে আমরা বিকেলবেলার দিকে আবার সুযোগ সুবিধা হলে আবার সেটা একটুখানি আলোচনা করব। আমি গুরু মহারাজের শ্রীচরণ কমলে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তিনি তো দীর্ঘভাব থেকে মানে তিনি চলে গেছেন, এটা নয়, আমাদের শুধু চোখের আড়ালে আছেন, কিন্তু তিনি বিদ্যমান আছেন। কারণ গুরুবল ভেতি রেখে আমরা এক মুহূর্ত চলতে পারি না, সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে গুরু মহারাজ পূর্বশৃঙ্খল আছেন। সুতরাং আমাদের হয়তো দৃষ্টির অবচরে আমাদের এই কৃতকলাপের জন্য ওরা কিছু সময়ের জন্য অন্তর্ধান বা আড়ালে যান, কিন্তু ওরা নিত্য বস্তু, শাশ্বত বস্তু। সুতরাং তিনি আমাদের উপরে আমার বিশেষ করে আমাদের উপরে তিনি কৃপা আশীর্বাদ করেন। শ্রীল মহারাজির চরণে নিবেদন জানাচ্ছি তিনি আমার উপরে কৃপা বর্ষণ করুন। আমার তো মাঝে মাঝে বিরাট গ্রাম হয়, অভিমান বস্তু অনেক কিছু ব্যবস্থা করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য আমি এখানে সমাপ্ত করছি।
বেশ সুন্দর মহারাজের জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট কিছু বর্ণন করেছেন, আরো বহু কিছু আছে। শ্রীমান গোবিন্দ মহারাজ তাহার লেখালেখি সব কিছু গৌড়ীয় পত্রিকার ভার সব কিছু নিয়ে তাহার অন্তরঙ্গ সেবা করেছে। যেরকম হতে গুরু মহারাজের বামুন মহারাজ লেখা দেখি করতেন ওই রকম ভাবে করেছে, ওই তাহার অনুভূতি তাহার সঙ্গে কিরকম হওয়াতে লেখা ইত্যাদি হল এবং তাহার কৃপা পেল আর তাহার বৈশিষ্ট্য এ সম্বন্ধে কিছু বলে তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্থ।
তাই বরাবরই গুরু মহারাজের কাছে ছিলাম এবং তিনি অধিকাংশ সময় গ্রন্থ প্রকাশনাগার যা আমাকে রেখেছিলেন নিযুক্ত করে, তা সত্ত্বেও কিছু কিছু মঠের ম্যানেজমেন্ট সম্পর্ক প্রায়ই দেখাশোনা করতে হতো আমাকে। হয়তো যে কথাগুলি গুরু মহারাজ বলতেন না সেগুলি আমাকে বলতে হতো। একবার আমাদের মঠে বার্ষিক সাধারণ সভাতে কিছু মঠ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল, যখন আমি পূজ্যপাদ মহারাজকে এমন কিছু কথা বলেছিলাম, মহারাজ আমার বড় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দেখলাম পরবর্তী দিনে মহারাজ আমাকে নিজে ডেকে আদর করে বলছেন, দেখো এই কথাটা তো তোমার নয়, তুমি সকলের কথাটাই তুলে ধরেছ মাত্র। যারা মঠের ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে দেখাশোনা করে তাদেরকে কিছু বলতে হয়, রূঢ় বাক্য হলেও সেগুলো বলতে হয়। তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলো নাই, এই জন্য আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তোমরা যে এখন থেকে এই মঠ বেদান্ত সমিতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছো এটা দেখে আমার খুব আনন্দ লাগছে। এবং মহারাজ তখন আশীর্বাদ করেছিলেন যে পরবর্তীকালে হয়তো তোমরা বেদান্ত সমিতি হাত ধরবে। গুরু মহারাজের শেষের দিকে যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তার কাছেই ছিলাম আমি। একদিন প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে গুরু মহারাজের, তিনি হসপিটালে বেডে শুয়ে আছেন। দুই দিন গুরু মহারাজের ঘুম নেই, আমার ঘুম নেই। রাত্রি যখন 11টা, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ে আছি, গুরু মহারাজ দেখছি আমার গলায় হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আছেন। আমি বলছি আমি একটু ঘুমান। গুরুমান বলছে তুমি তো ঘুমাচ্ছ, আমি কি করে ঘুমাবো? তখন বলছেন, দেখো বাবা হলে ছেলের জন্য অনেক কিছু করতে হয়, তোমরা তো আমার সন্তানের মতো, তোমরা যা কিছু করো আমি তো আর থাকবো না, আমি তো ইনফাইল হয়ে গেলাম, অপরমান্য হয়ে গেলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ আছেন, মহারাজের আনুগত্যে তোমরা সাধন ভজন করবে। তিনি বারবার এই নির্দেশ দিয়েছেন, যখন আমাদেরকে যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি সবসময় নির্দেশ দিয়েছেন, এবং প্রতি পদক্ষেপে যে কোনো সময়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি বলতেন, তোমরা মহারাজকে ফোন করো, মহারাজের বিনা নির্দেশে তোমরা কোনো কাজ করবে না। একবার গুরুমজা অপরাঘট হয়, বছর 5-এর আগে হয় হবে, পূজ্যপাদ মহারাজ দিয়েছেন দোলের সময়। গুরু মহারাজ এবং নারায়ণ দুজনে আলোচনা হচ্ছেন মহারাজের সঙ্গে। মহারাজ বলছেন, মহারাজ আমি আগে চলে যাব। গুরুমহারাজ বলছেন, না না তা হবে না, আপনি কি চলে যাবেন, আমি আগে যাব, তারপর অনেক কিছু হয়তো হবে, সেগুলো আপনাকে সব ঠিকঠাক করে এদেরকে গুছিয়ে রেখে তারপর যেতে হবে। তাই আজ মহারাজ আমাদেরকে গুরুদেবের ন্যায় রক্ষা করে চলেছেন। আজ বেদান্ত সমিতির এই কঠিন সময়ে তিনি আমাদেরকে নিজের ছত্র ছায়াতে রক্ষা করছেন। শ্রী গুরু মহারাজের যে সহযোগী তা আমরা লক্ষ্য করেছি, তিনি শারীরিক অসুস্থতা তো সহ্য করতে পারছেন, তাছাড়াও মঠের বহু বহু কঠিন সমস্যার সময় দেখেছি তিনি কিভাবে কষ্ট স্বীকার করতেন, আর কিছু বলতেন না। হয়তো আমরা অনেক সময় বলেছি আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনি কেন কোনো জবাব দিচ্ছেন না, আপনার পাওয়ার থাকতে আপনি কেন পাওয়ার কাছে লাগাচ্ছেন না? বলছে, আরে পাওয়ার যখন তোমরা পাওয়ারে যাবে তখন বুঝবে, পাওয়ার থাকলেও পাওয়ারকে কাজে লাগানো যায় না। সেটাই এখন আমরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখছি যে হ্যাঁ বাস্তবে অনেক কিছু করে অসুবিধা হয়। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু যা কিছু করতেন সব কিছু, আমরা অনেক সময় তো রাগ করে বলতাম বেদান্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ যে কে আছে আজ আমরা বুঝলাম না। তখন বলতেন, কেন কর্তৃপক্ষ তো মহারাজ একজন আছেন, যা কিছু করার তোমরা সবকিছু মহারাজের আদেশ নিয়ে করো, তাতে আমিও খুশি হব, মহারাজও খুশি হবেন এবং সমিতি ভালোভাবে চলবে। তাই এখনো পর্যন্ত আমরা মহারাজের শ্রীচরণ কমলে তাঁর ছত্র ছায়াতে চলছি, এবং ভবিষ্যতেও যেন আমরা মহারাজের চরণ কমলে তাঁর ছত্র ছায়ায় থাকতে পারি এই আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আচ্ছা,
সুন্দর অনেকগুলি স্মৃতি জাগাই। এখন শ্রীমান ভক্তি বেদান্ত
হরিজন মহারাজ ওরা
সর্বাগে অসমন্ত গুরুপাদ পদ্ম নিদ্রাপৃষ্ঠ কৃষ্ণপাদ স্তোত্র সতশী স্মরূপ বেদান্ত বামন্দ শর্মা হরিচন্দ্র সুমরি অনন্ত করে শাস্ত্রপাল পদ্ম পরিচয় আচার্য বিষ্ণুপাল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী হরিচন্দ্র কুমারী অনন্ত করে শাস্ত্রানন্দ উৎপন্ন তৎপশ্চাৎ মধ্য শিক্ষা গুরুপাল পদ্ম নেত্রীলা বৈষ্ণব বিষ্ণুপাল ভক্তিবেদান্ত জীবন গোস্বামী মহারাজ কুমারী সত্যি গুরুপাল চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। যখন আমি গুরু মহারাজ এবং বিক্ষ মহারাজের সঙ্গে ঠাকুর নগরে গিয়েছিলাম নরহরি সেবা দুর্গাপুর বার্ষিক মহোৎসবে, সেখানে গুরু মহারাজ হরি কথা বলছিলেন। বিক্ষ মহারাজ বললেন, পরে আমাকে একটু হরি কথা বলার জন্য বললেন মহারাজ গুরু মহারাজ। আমরা অপকার একটু বললাম, তবে গুরু মহারাজ পরে যাচ্ছেন কি বললে, তখন পরে আমার ঘরকে বললাম যে এই বলেছি অল্প সময়ের মধ্যে ছেড়ে দিলে। আমি গুরু মহারাজ বললাম, গুরু মহারাজ আপনি একটু আশীর্বাদ করুন যেন আমার ভালো করে শ্রবণ হয়। তখন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তো আমিও মহারাজের চরণে প্রার্থনা করেছি, মহারাজ আপনি একটু আশীর্বাদ করুন যেমন মহারাজ সন্ন্যাসী কাটছেন সে সময় বলুন কি তোমার একটি গল্প সাজে গোবিন্দ মহারাজ আমাকে ডাকেন, আর প্রেমানন্দপু আছেন মহারাজ আমার একটাই আমি কত করেন হরি করা আমার সঙ্গে বলবো না, এই চিন্তা বলতে হবে না, তুমি একটু শ্রবণ করবে। তো গুরু মহারাজ যখন সব পূর্বাশ্রমে গিয়েছিলেন তার আগে কিন্তু শিল নারায়ণ মহারাজের মঠে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে, সেই সময়ে গুরু মহারাজ যেসব গ্রন্থগুলো আছে সেগুলো চাইছেন বলে দেখি গ্রন্থগুলো দেখি কি আছে। তো এখানে গুরু মহারাজ আমি তখন বললাম যে মঠে আসার কথা, গুরু মহারাজ কিন্তু আশীর্বাদ করলেন। তো গুরু মহারাজ অতি মর্থ চরিত্র গুরু প্রাক্তনকে গুরু প্রাক্তন হচ্ছেন গদাধর ভিন্নতন, গুরু মহারাজ নিজের তার গ্রন্থ আসছিল গুরুপাল হচ্ছেন গদাধর ভিন্ন অভিন্নতন গুরু প্রাক্তন। তো গুরু প্রাক্তন নিত্য আছেন এবং আসবেন চিরকাল গুরু মহারাজ আছেন। তো গুরু মহারাজের চরণে আমি কি বলবো, আমি কিছু বলতে অস্ত হয়, আর কি গুরু মহারাজের প্রভাব থেকে আমি তার চরণে ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এখানে সমাপ্ত করেছি।
শ্রীমান ভক্তি বেদান্ত তীর্থ মহারাজ কিছু পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে।
চক্ষুন্মীতমেন তস্মৈ শ্রীগুরভে নমঃ। নমঃ বিশ্বপাদায় গৌরপ্রতিষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত বামন গুরু স্বামীজি নাম সর্বপ্রথম অষ্টপদী পরমার্থতম গুরুপাদ ওম বিশ্বপাদ অষ্টোত্তর সদস্যমান ভক্তিবেদান্ত বামন গুরু স্বামী মহারাজ তথা ওম বিশ্বপাদ অষ্টোত্তর সদস্যমান ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ কি শ্রী চরণ স্বরূপ মে অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করতা তদনন্তর উপস্থিত পূজনীয় সন্ন্যাসী বৃন্দ সমস্ত বৈষ্ণব সমস্ত মাতা বহন স্বরূপ মেয়ে প্রণাম করে দেয় जबकि मैं छोटा सा बालक था उस समय 74 में सर्वप्रथम मैं महाराज जी की श्री चरण स्वरूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर्वप्रथम उनका दर्शन हुआ महाराज से उनके चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने मेरा नाम नाम कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने कहा तुम आ जाओ तुम्हारे जीवन का सब कुछ हम ग्रहण करते तुम्हारा उत्तरदायित्व सब कुछ मेरे हाथ में उस समय मैंने कहा अच्छा आ जाऊंगा उन्होंने कहा तीसरे दिन में तीन दिन में आ जाना ऐसा आ जाऊंगा मुझे कुछ भी पता नहीं कि कौन से साधन है क्या है मुझे जीवन में ये भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं था या कल्पना में भी नहीं था कि मुझे साधु बनना पड़ेगा और इस लाइन में आना पड़ेगा फिर भी ऊपर वाले की इच्छा है कि महाराज जी के चरण में उनका दर्शन हुआ उसी समय इस दिन में जबकि हम मंदिर में आ गए नवदुर्ग में इसके पश्चात महाराज से नहीं जो कि गुरु जी के चरण कमल में ले जा करके उन्हीं से मंत्र दीक्षा दिलवाई और स्वयं ने भी मंत्र दिया और इसी तरह से दोनों ने ही मंत्र दान किया और साथ ही साथ तब से मंदिर में और महाराज जी के श्री चरण स्वरूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय मैं नवोदय में भंडार डिपार्टमेंट में रहा तो कुछ व्यवस्था में ही रहा तो उस समय सभी बच्चे हंसी मजाक करते थे हमें कुछ आता ही नहीं श्लोक भी याद नहीं होता था ऐसे समय में फिर 2 साल बीतने के बाद में जब महाराज जी मथुरा में आए उस समय अंदर से प्रेरणा सब कुछ तो दे दी परंतु ऊपर से मैं आ नहीं पाया तो मेरा मन बहुत खराब रहा गुरु महाराज ने मुझे एक दिन 4 घंटे तक समझाया और 4 घंटे तक 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक पूरा समझाते रहे उस समय गोपीकांत प्रभु जनार्दन महाराज जी बोले गुरु जी अभी आपको जाना पड़ेगा काम रूप में 9 बजे गाड़ी है 8 बजे 4 घंटा आप बोलते चले जा रहे हैं तो गुरु जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें मैंने 4 घंटे बताया और तुम एक भी शब्द कुछ भी नहीं बोला क्या बात है कोई जवाब भी नहीं दिया उस समय मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी चाहे दुनिया कहीं एक तरफ पलट जाए और आप 4 घंटे क्यों 40 घंटे तक ही समझा दें फिर भी मैं महाराज जी को मन से दिल से हटा नहीं पा रहा हूं मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं और ना मैं कभी भूल ही सकता भूल सकता तो आप कृपया मुझे आदेश दें हमें मथुरा जाना मैं महाराज जी को छोड़ नहीं सकता उस समय गुरु जी ने कहा जा मैंने 4 घंटा सुना करके भी तुम्हें जब सुना नहीं सका अच्छा तुम जाना तो उस समय गुरु जी ने जल्दी से जल्दी प्रसाद लिया मैं भी भंडार से घूम घाम करके निकल करके आया एक माला लिया फुल माला लेकर के नाट्य मंदिर में जैसे ही उनको प्रणाम करते समय जिसके पश्चात मैंने माला पहनाया तो गुरु जी ने मुझसे कहा देख तुम मथुरा में जा रहे हो वहां न चावल मिलेगा न मीठा पानी मिलेगा और ना कोई ठंडी हवा मिलेगी और बड़ा कष्ट है और बड़ी परेशानी होगी। तुम दो तीन महीने के अंदर में आए जाए कर ये बात मुझे बता करके जाओ, तुम बचन दो। मैंने कहा गुरु जी, जब आपके चरणों में समर्पित हुआ जीवन भर हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, हम कहीं हटेंगे नहीं और हम आएंगे लौट के, पर हम और कहेंगे लौट के ये मैं नहीं कह सकता, मैं जरूर आऊंगा, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा ना कभी छोड़ूंगा, परंतु आप महाराज जी के पास जाने को दे आज्ञा दे। उस समय गुरु जी ने स्टेशन में जाकर के चिन्मय को किराए का पैसा दिया, मेरे लिए मथुरा जाने का किराए का पैसा दे। जब भी महाराज जी ने पहले ही मधुसूदन महाराज जी के पास में रख दिया और वो पैसा था, और फिर से दे दी। तब दूसरे दिन गुरु वैष्णवों की आज्ञा ले करके और उस दिन बहुत प्रसाद भी बनाया बना करके आया और वहां से फिर महाराज जी के चरण स्वर्ग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब उनकी कृपा आशीर्वाद मिली। सभी लोग पूछते हैं आप तो कभी पढ़ते नहीं, कुछ करते नहीं है, क्या बात है, कहां से बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें कुछ भी हमने तो पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, जो कुछ महाराज जी का गुरु जी का आशीर्वाद है। और दूसरी बात, जब जब मैं गुरु जी के पास में जाता रहा तो पहले पहले शुरुआती में क्या होता था, गुरु जी देखता हूं कि बहुत से महिलाएं बैठी रहती हैं, बहुत से भक्तों लोग बैठे रहते हैं, तो उनके सामने कुछ भूतों का गल्प सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप बार बार केवल भूत का ही कहानी सुनाते हैं और कोई भी हमें सुनने को मिलता नहीं है, अच्छा नहीं लगता हमें, आप ऐसा क्यों कहते। गुरु जी बोले थे ये तो साधारण है, इनको कोई तत्व दर्शाने की कथा कुछ हरी कथा सुनाओ, ये उठ के भाग जाएंगे, ये सुनेगा इसकी क्या करो, भूतों का गर्म सुना तो हंसते ही रहेंगे और हंसी दिल के नहीं चलेगा, तो इसकी इनको यही सुनाता और इसी के माध्यम से कुछ ना कुछ भूत सुना देता हूं। तब मुझे अच्छी बात, मैंने कहा गुरु जी हमारा मन नहीं भरता है, हमारे बहुत कम समय है जो कि आपके पास आता, आप हमें ऐसा कोई बात सुनाइए जो कि नई नई बात हमें सीख हमें सीखने को मिल जाए। बोले ठीक है, तुम जब आएगा हम कुछ बताएंगे। और ऐसे ही गुरु जी उस समय क्या करते, हमेशा ही कहते वेदांत की बातों को कहा करते और बार बार वही प्रेरणा देते, बोलते क्या, बोले आचार्य श्री रामानंद, श्री मनमध्याचार्य, श्री शंकराचार्य, ये बड़े बड़े आचार्य लोग भी और जल्दी से जल्दी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यापक रूप में प्रचार किया, इस बात को सोचा करो और वेदांत की बात सुनाया करते। तो ऐसे ऐसे वेदांत की बात सुनाते और जब कभी जाओ गीत गोविंद का एक श्लोक अवश्य कहा जाएंगे, यदि हरि स्मरणे सरसम मन, स्मरण कला विलास मुदुर फलम, मधुर कोमल कांत पदावलि, श्रु कदा जय देव सरस्वती। बार बार इस श्लोक को दोहराते, बार बार करते बोलेंगे इस श्लोक का यात्रा और इसमें डूबना। गुरु जी कहते देख भजन तुमसे नहीं हो पाएगा, कितना भजन करेगा, कहां तक दौड़ेगा, एक काम कर, यदि भजन करना है तो रोना सीखो, गुरु वैष्णव और गुरु भगवान के लिए रो, तब भजन हो जाएगा, नहीं तो और भजन नहीं हो पाएगा। हमेशा विरह विप्रलंब में और गंभीर भावों का मेट में रहते, बाहर कभी प्रकाश नहीं करते। इस प्रकार बहुत सी बातों को कहा करते। एक बार गुरु जी ने आक्षेप करके कहा, बोले कि देखो मैंने बहुत प्रयास किया पर प्रचार में निकल जाने से समय उसी में निकल गया, बीत गया और समय भी निकलता चला गया। मैं चाहता था कि वेदांत के गोविंद भाष्य पर कुछ विशेष व्याख्या नहीं करके राधा पर व्याख्या नहीं करके उसको लिखने की इच्छा, पर मेरे जीवन में हो नहीं पाया, इसलिए तुम लोग इस पर ध्यान रखना है। और बहुत से ग्रंथों का नाम भी बताया और बोले ये ग्रंथ हमें प्रकाश करने की इच्छा थी, हम कर नहीं पाए। इस तरह से आखिर सुगने बताया। मैंने कहा गुरु जी मैं महाराज जी के पास में रहता हूं और उनसे जो कुछ सीखने को पढ़ने को हम लोग सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि आप हमें और कुछ सिखाएं। आपके पास अगाध ज्ञान भंडार जो कि समुद्र के समान, और ऐसे समुद्र के समान और इतने श्लोक कहा करते कहां कहां से बोलते हैं और कितना श्लोक सुनाते हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं। मैंने पूछा गुरु जी आपको इतना श्लोक याद कैसे हुआ, कहां से आपने सीखा और कैसे आपने अध्ययन किया, क्या किया? तब उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई। भक्ति विनोद श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में पढ़ते समय परम गुरु महाराज जी ने जैसे उन्हें श्लोक सुनाया और सभी ने श्लोक सिखाया, इसी तरह से श्लोक सीखते हैं। दूसरी ओर बोले कि मेदिनीपुर में जब की गुरु उन्होंने कहा उनके गुरु जी यानी परम गुरु महाराज जी जब किताबों को लिखने के लिए सारे प्रमाण को संग्रह करना होता और उनको भेजा, तब वे बोले कि मैं मेदिनीपुर में गया वहां एक राधा रखो थी तो उनके साथ वहां के लाइब्रेरी के सारे किताबों को देखने को मिला और एक एक करके पूरा छांटता चला लिया, देखता गया और सारा कोटेशन लाया। सर वो सब देखने से मुझे एक तरह से पूरा पढ़ना हो गया, इसलिए सभी शास्त्रों को पढ़ लिया। इसी प्रकार मैंने एक बार कहा गुरु जी आप हमें और कुछ सिखाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे भी कुछ ज्ञान गरिमा संग्रह करूं और आपसे हमें कुछ प्राप्त हो। तब ये बोले महाराज जी को और गुरु को कभी भी अंतर मत देखना, कभी भी भेद दृष्टि से मत देखना, जो हमारी शिक्षा है उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं की शिक्षा ही हमारी शिक्षा है, दोनों में जो कहीं अंतर देखा जाए उसका सर्वनाश हो जाएगा। यदि देव महाराज के आज गुरु महाराज के मध्य परस्पर यदि भेद दृष्टि से देखें निश्चित रूप से सर्वनाश हुए। गुरु महाराज बोलते हैं एवं तिनी चिट्ठी एक बार पत्र जान बोलते देखो पर कंच के गति नहीं देखी को काले, जरा पर चर्चा पर निंदा करे तादिर कोनो काले कोनो समय गति नाय महाप्रभु कृपा करुणा थी तारा सुदूर पर आहत वंचित। আবার তিনি বললেন কি একবার পত্রের মধ্যে দিয়ে একবার পত্রকে দ্বারা উনি কাহা যে মুক্ত হতা হই দূসরোক উদ্ধার কর পাতা হয় মুক্ত কর পাতা হো তেরনা জানতা হই ডুবতে হুয়ে দূসরে কো বচা সকতা হিসো তেরনা আতা নই যে মুক্ত নই হতা দূসরোক কদাপি মুক্ত নই। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत से तत्व विषय तत्वों को सिखाया और बताते हम लोग जब कभी आते कुछ न कुछ टुकड़ी भुगड़ी करके कुछ न कुछ उल्टा सीधा प्रश्न करते पूछते थे। तो गुरु जी यद्यपि वे गंभीर हैं फिर भी हम लोगों को अपना बालक ध्यान करके वे सुनाते। एक बार मैंने पूछा कलकत्ता में गुरु जी इतना सारा मंदिर है आप और इतने मंदिर हैं तो आपको कौन सी जगह अच्छा लगता है, कहां आप रहना पसंद करते हैं? उस समय गुरु जी बोले कि मुझे सिलीगुड़ी में मिलनपल्ली में अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों आप इसका भी उत्तर दीजिए। क्यों आपको अच्छा लगता है, क्या कारण? उस समय गुरु जी बोले, बोले देखो वृंदावन इतना सारा मंदिर है और जहां कहीं जाओ लोग खूब सेवा करेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई हरिकथा सुनने को नहीं आएगा, कोई हरिकथा सुनना नहीं चाहेगा। सिलीगुड़ी जाने से कम से कम वहां कुछ हिंदुस्तानी भक्त लोग हैं और भी कुछ बंगाली भक्त लोग हैं, कम से कम पे बैठ करके सुनते हैं कुछ कथाओं को हम कह पाते। यदि हम लोग कथा कीर्तन नहीं करें, कुछ बोले नहीं, तो दिन भर खाए पिए सोए हम लोगों का जीवन ही दिन ही नहीं निकलता है और हमारा अच्छा भी नहीं होता। इसलिए मेरा अच्छा लगता है कि कुछ लोग हरी कथा तो सुनते। तो इस प्रकार जब जब कुछ न कुछ ऐसे पूछते थे तब तब उत्तर दिया करते थे। एक बार मैंने गुरु जी से शहरा फुले में पूछा कि गुरु जी महाराज जी के पास में जब कभी जाओ, और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि जब कोई काम नहीं है महाराज जी पूछ लेते हैं, बोले कोई काम है अभी? मैंने कहा कोई काम तो अभी दिख नहीं रहा, अभी कोई काम तो महाराज जी कहते हैं जाओ वेदांत और पुराण और श्रीमद भागवत सभी ग्रंथों से ये जीव स्वरूप जीव तत्व को निकाल करके आओ छाड़ो। तो हम देखते कि जीव तत्व तो हमेशा यही बात आती है और जीव का स्वरूप जीव का स्वरूप, और ये तो हमेशा ही दिमाग माथाखोरी करते रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और ये तो हमेशा ही सोते रहते। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी जीव तत्व पर बहुत सारी बातें आती है और बहुत से लोग बहुत कुछ कहा करते हैं, आपका भी विचार हम सुन लें तो आप हमें कुछ बताइए। तो शरण गुरु जी इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के दो तीन घंटे तक बोलने ही चले गए। रतिवीर ठाकुर जी के किताब को पुस्तक खोल करके उन्होंने पढ़ करके और पूरा के पूरा कीर्तन एकदम बताते चले। मैंने कहा बहुत हो गया, अभी तो समाप्त कर कभी नहीं गुरु जी बोलते ही जाए। एक बार सिलीगुड़ी में मैं गया तो गुरु जी के पास में प्रणाम करके मैं खड़ा था। इतने में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी गुरु जी रस तत्व पर विवेचन कर रहे और बोलते जा रहे, बहुत सारे रस तत्व पर, पांचों रस पर और रस तत्व पर खूब विवेचन कर रहे और खूब बोलते जा रहे और हमें सुना रहे। इतने में भजन गुरु जो की गुरु जी का सेवक था, उस समय प्राय डेढ़ दो घंटा पार हो गया, गुरु जी बोलते जा रहे, मैं खड़ा हूं सुन रहा हूं और मुझको ही बोले। भजन गुरु बोले गुरु जी आपकी तबियत खराब है, आप इतने देर बोलते जा रहे हैं, अभी तो बोलना बंद कर दीजिए। उस समय गुरु जी उस पर बिगड़ गए, बोले तुम जानते हो मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, जा तुम बाहर निकल जाओ, अभी तुम सुनने जो गड़ी हो, जो बात मैं कह रहा हूं उनसे कह रहा हूं उसको कह रहा हूं। तो इस तरह से गुरु जी का अपार स्नेह करुणा हर बातों को सिखाते थे। इसी प्रकार जिन्होंने असीम अपार करुणा की है उनके साथ जीवन में एक दिन झगड़ा भी किया था। संन्यास के पहले दिन रात में जाकर के गुरु जी के घर में उन्होंने बुला लिया, बोले कि आज तो झगड़ा करना पड़ेगा कि गुरु जी से सब प्रकार की बातें होती है, एक दिन झगड़ा भी कर लिया जाए जीवन में, यह भी सब निकालना पड़ेगा। तो अब गुरु जी बोले हैं तुम्हें सन्यास हम दे करके छोड़े, हम कहते हैं नहीं हम सन्यास नहीं देंगे, क्यों देंगे हो चाहिए किस कारण? और इसी बात पर बहुत ज्यादा बहस करता चला गया, बहुत झगड़ा विवाद किया। तो उस समय गुरु जी ने बहुत सारे अंतर से बातें सुनाई। इसी तरह से आज ऐसे महान गुरु जी जिनकी असीम कृपा करुणा निरंतर उन लोगों के स्मृति पाठ में जागरूक रहे, वे आज भी नित्य वर्तमान है, जिस समय रूप सनातन में आए उस समय एक बार भागवत सप्ताह चल रहा था, महाराज जी भी थे, गुरु जी आए उनकी पूजा अर्चना दी और बड़े दैन विनय अर्थी के साथ उन्होंने अपने हृदय का उद्गार वर्णन किया। इस प्रकार जो अत्यंत गंभीर ज्ञान के अपार समुद्र और भक्ति रस के परंपार ऐसे महान के चरणों में आज हम पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। कृपया हम सबको पंचांग को जरूर से कृपा प्रतिदान पावे
बहुत अच्छा। श्रीमान भक्ति पदान माधव महाराज जी संक्षेप में उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे।
वंदे शिवाद पद्मः शिवामन नारायण तीर्थम जे संचित प्रसाद भक्ति प्रकटिष्यति आविर्भूत सकारुण्य शिवामन नारायण स्वरूपानुग प्रवरौ शिखशपति भजे अग्रणीय कृपाधये तत्सत्तमाय तत्सत्प्रदानाय वंशाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुद्वयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सबसे पहले अष्टौ गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टौ सदस्यवद भक्ति वेदांत सभा मनु गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परिवेदक आचार्य वर्य अष्टौ सदस्यवद भक्ति वेदांत सभा नारायण गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद शिष्य सचिव डॉक्टर सिंह महेश्वर कमलों में साष्टांग दंड से जपन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित गंधिवाद मन के अर्जुन चरण में दंडवत प्रति ज्ञापन सुनी तदनंतर उपस्थित सज्जन बिंद गौरवी सज्जन बिंद एवं मातृमंडली को यथाजी को दंडवत प्रणाम अभिवादन ज्ञापन करता हूँ। आज शिव महाराज मुझे इसके गुरु महाराज के अप्राकृत जीवन चित्र के रूप में कुछ प्रकाश करने का आदेश दिया है। इस समय जब गुरु महाराज जी अस्वस्थ थे सीधावाड़ी में थे शिव महाराज जी पूज्य कैलाजक महाराज तीर्थ महाराज में हम सब सीधावाड़ी में गए थे। देखते गुरु महाराज ने बताया नवीन जल्दी जल्दी मांगो कोई मिशनरी हटा है और कोई रोक नहीं सकते अगर मैं सरेंडर ना करूं जोर से बांध के ले जाएगा इससे बल्कि सेक्शन जाना ही ठीक है। जब हम लोग कलकत्ता में पहुंचे हावड़ा स्टेशन पर तो हमारे कुछ भक्त लोग टैक्सी लाने के लिए गए। उस समय श्रीमद बनवारीलाल सिन्हानिया जी और उनके बच्चे लोग जगन्नाथपुरी से पहुंचे और उसका वापिस जा रहे थे। सिन्हानिया की उनकी बेटी ने गुरु जी को सिखा बताया उधर को पापा जी महाराज जी खड़े हैं। सिन्हानिया जी आए फिर हम लोगों को लेकर के अपने बालीगंज स्थित वासभवन में ले गए उनके घर में मुझे उतार दिया। मैं गुरु महाराज जी महाराज दोनों करके रस्सी बनाकर फिर ले गए उधर ले गया था। उस समय जब मैं पहुंचा दोनों देख करके मुझे हंस रहे थे। मैं पूछा भाग क्या किसे हंस रहे हैं मैं देखता बैठ बिल्कुल खाली है। तुम्हारे जी के लिए सब समय कुछ दो तीन समय के लिए ब्रेकफास्ट करता था। मैं बता ये तो बैग आप लोगों के लिए भरा था सबसे भरा रहेगा भी खाली नहीं होगा। दोनों बात कर रहे थे तो बताया गुरु महाराज जी तो पहले मैं जगत से जाऊंगा, गुरु महाराज नहीं पहले मैं जगत से जाऊंगा, मैं हार रोगी हूँ, मैं क्या करूंगा? मैं बोलता है कि आप दोनों में बात करने विषय ही नहीं है, ये विषय बात करना पड़ता है तुम्हारे को? नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल खराब है, हाथ खराब है, मैं दिन जी नहीं सकता। तब गुरु महाराज जी ने बताया, महाराज जी आप जानते नहीं, आपके लिए गुरु महाराज ने बहुत बड़ा सेवा बाकी रखा है। जो सेवा वेदांत स्वामी जी के आप ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये संभव नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। जब हमने पहले बार देश प्रचार में गए थे 1996 में, उस समय जब हमने याद दिलाया तो महाराज जी रोक रही चिट्ठी निकाले गुरु महाराज जी को, महाराज आप क्या कहा था अब मैं समझ रहा हूँ, मैं विदेश में आकर के सफल के साथ प्रचार करूंगा, मैं कभी नहीं सोचा था। ये गुरु महाराज पर जो है कृपा है और आप लोगों पर भी अशेष आशीर्वाद है, ये भी संभव नहीं था। ये गुरु महाराज जी पहले ही मैंने बता दिया था कि आपको विशाल काम करना पड़ेगा जो किसी तरह नहीं होगा। जब मेरा दीक्षा हुआ था, दीक्षा के दौरान गुरु महाराज ने बताया कि महाराज के साथ मथुरा जाना है। मुझे नहीं पता था कि कब चावल कब मिलेगा, ये सब कुछ नहीं पता था, मैं सीधा आ गया। कुछ महीने के बाद परिक्रमा के बाद गया, बहुत गर्म है। जब गुरु महाराज कुछ महीने के बाद आए थे, साथ में सुंदरानंद प्रभु था, मैं बताया गुरु महाराज जी इधर मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, इतना गर्म मुझे सहा नहीं जाता है। तो गुरु महाराज बहुत कुछ जुक्ति दिया, उनके जुक्ति कहकर खंडन किया। आखिर में गुरु महाराज ने पूछा, सही बता शिष्य का कर्तव्य प्रधान कर्तव्य क्या है? मैं बताया गुरुपाद की प्रीति विधान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो तू मेरा शिष्य, तेरा कर्तव्य क्या है? मेरा प्रीति विधान करना। कहता हाँ, मैं तो कभी नहीं ये मत बोलना कि विधान नहीं होगा, ये नहीं करूंगा, जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। और ये याद रखना, जे सोए से रोए, जो सहन करता है वही जगत में रहता है। सहन करना सीखो, कभी भी किसी प्रश्नों के बारे में जिंदगी में अपने पास संपेल मत करो। उस समय जब पहले पहले आया मेरे परीक्षा के लिए, शुभानंद रूप क्या करो ये करो, मैं नहीं जानते अच्छा या बुरा होगा, क्योंकि प्रेमानंद रूप नंदन बताया था ऐसा मत करो, ये तुम्हें ठगने के लिए कर रहे हैं। तो मैं गुरु ने बताया था, बोले नहीं कभी प्रश्नों के बारे में मुझे संपेल मत करना। भगवान बुद्धि जी है, गदानी बुद्धि एवं जिनमाओं को जानते थे, अपने बुद्धि की व्यवहार करो, करते सुने करते से क्या होगा और बुरा तो क्या हो सकता है, तब करो। बस मैं लोग तुम्हें परीक्षा के लिए करते हैं, उनका दोष के लिए कुछ भी, उनका दोष मत देखो। तब से मैं मथुरा में गुरु जी के साथ ही रह रहा हूँ। एक समय गुरु मायावती में कह रहे थे रथ यात्रा के समय, बोलिए गोलो विघ्न कितने प्रकार के हैं, तो मैं आठ प्रकार बताया, श्लोक पूछा, श्लोक बताया। तो बताओ ये जगन्नाथ जी जितने विघ्न है, जगन्नाथ जी को दारू विघ्न कहता है, दारू भगवान क्यों? तो मान जी ने सुना था तो बताया, बोले भाई सुनोगे मुझे बताइए। तो बताया कि देखो भगवान की स्थिति कैसा है, कैसे विषम परिस्थिति में भगवान जीते हैं, उनके क्या स्थिति है। तो बताया एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा द्वितिया चंचला च पुत्र मेघ भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवार शयनाग्रौ सज्जा वाहन कर्णधारी स्मारण स्मारण सलिल चरितम प्रादुर्भूतो मुरारी। महाराज जी का अर्थ क्या है? महाराज जी बता दे, भगवान के दो शक्ति हैं, एक लक्ष्मी जी एक सरस्वती। भगवान कह रहे एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, सरस्वती बहुत चकेटी है, बहुत बोलती है, बाचाल है, और दूसरा लक्ष्मी चंचला है, और क्या करूं, ये दो पत्नी है, दो शक्ति है, एक तो वो मुखरा है चंचला है, क्या करूं। सोचा कोई बात नहीं, बेटा का बेटा का लेकर जीवन गुजारा करूंगा। बेटा भी ऐसे निकला, पुत्र ये का भुवन विजयी मन मतो दुर्निवार, भगवान पुत्र को मैं काम दे, इसका कोई जोर नहीं मानता, किसका काम नहीं मानता, पूरा जगत को बांध करके रखा है, सबको नाम नाम करके रखा है, क्या करूं। तो मैं थक गया, पुत्र ये का भुवन विजयी मन मतो दुर्निवार, थोड़ा जाकर सुधार बस सो जाऊं, दिमाग ठंडा होगा। समुद्र कहा स्वयं आप दो सज्जा जाकर सीधा समुद्र में, समुद्र पानी का दिमाग ठंडा हो जाएगा, बिस्तरा क्या है? सर्प का बिस्तरा है। जाओ कैसे? वाहन चाहिए सौदय किसी, जाओ कैसे? वाहनों पर गाड़ी। पहले पहले सर्वद अपने वाहन ले लिया सुन करके, मेरे बचाने को चिड़िया, वो कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ में साथ में दुश्मनी है। स्वयं सज्जा बाहर स्वर्ण गाड़ी, स्मारम स्मारम सर्य जलिपन दारूढ़ी। ऐसे में अपने घर की व्यस्त चिंता करते करते मैं दारू जन्म बन गया। और एक जन्म दी क्यों प्रकट, एक याद रखना। फिर बताया एक बार, देखो ये जगत में मैंने पूछा कि सब लोग भले कभी मठ में आए हैं, बहुत लोग बहुत उन्नत हो जाते हैं, आज कुछ लोग उन्नत क्यों नहीं होते, कारण क्या है? तब गुरु ने बताया कि देखो एक समय एक बंदर को बजाने वाले बंदर को ले जाकर खेल दिखाते, पैसा रोजगार करते, तो बंदर क्या रहे हैं कि किसी ने सागर पिटारा कोई सिखाया नहीं, कई खड़ा गिरीदर पर कोई किया वाणी, क्या कुंभ सीता नाथको मैंने किया चोरी, सही वंशज भव हम वेद्या की चेतोली। किसने सागर उतारा? कौन? हनुमान जी। कभी बंदर कुल नहीं आए थे। रामचंद्र भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता देवी को रावण हरने के उपरांत ढूंढने के लिए हनुमान जी सबसे पहले सागर को उतार के लंका में गए थे। और कोई किया वाणी, सुग्रीव भी बंदर वंश में आए आकर के भगवान से कृपा की। कोई उखड़ा गिरी दरकर समुद्र मंथन के समय हनुमान नौ बहुत से बंदर जाकर के गिरी पर उठा कर लाते थे समुद्र मंथन के लिए और बंधन के लिए। कोई सिखाया नहीं। अरे अंतिम समय में बाली मर रहा था, सुग्रीव की लड़ाई में जब रामचंद्र को मारा था उस समय को नीति सिखाया था, कोई सिखाया नहीं। क्या कहूँ सीतानाथ को मैंने क्या चली, मैं सीतानाथ रामचंद्र क्या कहूँ, मैं उनसे पूछा था तुमने क्या चोरी किया है, जैसे कोई चोरी चोरी करता है तो हाथ में बांध करके उनको ले जाते हैं, जैसे मैंने क्या चोरी किया जो बेदिया जो खेल दिखाता है गले में फांस लगा करके चलकर सोल रहा है। ऐसे ही हम सब भगवान के विभिन्न होने पर भी जो जितने अधिक शरणागत हैं वो उतना अधिक भले उन्नत लाभ करते हैं, जो अपने स्वरूप से अपव्यवहार करते हैं वो उन्नत नहीं हो सकते हैं। जो याद रखो बंदर गले में गोली बंदर हमें कभी घुमाया नहीं, और गुरुपाद पद के चरण में ऐसे करना तो भले उन्नति लाभ कर सकता है। एक समय जो कृपा महाराज जी गुरु महाराज जी मथुरा में आए थे, मुझे टिकट के लिए बताया था, मैं टिकट करके लाया था, मेरी गलती और कैसे गलती के लिए मैं आबाद हुआ। जब गुरु महाराज जी कितना सब चले गए रेस्टोरेंट से वापिस आए, बताया गुरु महाराज जी वापिस आए, क्या हुआ तो बताया कि एक महीने बाद है, तो गुरु महाराज जी ने बुलाया, देख तू मेरे पास तेरी चल छिप जा, महाराज जितना भी बुलाए तू शब्द मत करना, निकलना नहीं किसी तरह से, तू मेरे तो बहुत पिटाई करेंगे। जैसे तू कह रहे मैं जब निकलता रहना नहीं, दौड़ते से आते दौड़ करके पीने के लिए करते आ जाओ तो मेरे सामने मेरे बेटे को पीओगे, कैसा हिम्मत दे लेता हूँ, तुम कैसे पुलिस वाले आ जाओ, पहले मुझसे लड़ो फिर उनके पास जाना। फिर आधा पड़ा कैसे चला बीमारी चुपचाप जाकर घर में पानी पी करके घर चले। ऐसे गुरु एक बार महाराज जी ने हिसाब के लिए भेजा था कलकत्ता मठ में, उस समय हमारे नवजी में थे, उस समय सब थे, गुरु महाराज उस समय और जीवन लिख रहे थे, तो उनको बताया उन्होंने बोला हमको, तो गुरु महाराज जी के लिए प्रणाम किया, अचानक उन्होंने बहुत बिगड़ गए, बोले हरम देश को कहाँ का होता, उन्होंने बताया ये श्लोक बुद्ध स्वामी से लुका है, सजा के आश्रय स्थित थे साधु संग सतो गए श्रीमद भागवत तथा नाशा बोले से कई सह लड़कों है जहाँ जो चेता रूप में है पर दिखा सकता है यहाँ दिखा सकता हूँ, कोई खास है तो लाल चेतन चेता में लिया दिया दिखा दिया तो गुरु महाराज जी हाथ में पीठ में हाथ करें तो पूर्व मासांडे पाचन मास मैं सीधा गुरु जी बिगड़े क्यों मैं बिगड़ने का परीक्षा कर रहा था कि तू मैं ऐसे राज्य बिगड़ने को तुम घबराता यानी देखने के लिए मैं किया था जो हंड्रेड पाचन मास कोई चिंता नहीं। एक बार गुरु महाराज जी सदर मठ में आए, उस समय सेवा तीर्थ महाराज जी हैं एवं सब लोग थे। वे श्लोक पूछा, ये बताओ सबई पुंसां करो धर्म यतो भक्ति रजो सजे अहै दुख का प्रतियना जात्मा सब प्रसिद्ध। इसका अर्थ बताओ। सामने बताया सर, ये पुरुष का ही पवन धर्म है। बता क्यों, उधर स्त्री का धर्म नहीं है क्या? पुरुष लोग भजन करेगा, स्त्री का भजन अधिकार नहीं है? मैं अपने दोनों के लिए पंडित को बुला लिया, बुला के ले आया, बोलो बोल। इसमें यही बताया स्त्री का भजन कोई अधिकार नहीं है, पुरुष का धर्म हो गया। तो हम लोग पुरुष कर नहीं है सर, तीनों में से पुरुषाम आपका जीवों के लिए, पुरुष के लिए नहीं, जीव जीव के लिए, सबके लिए। और जब भी कुछ नवद्वीप में कुछ होता है, पहले गुरु महाराज हमारे दोनों में आलोचना होती हो, क्योंकि प्रकाश को पता नहीं चलता था, हमारे साथ रहने का सब पता चलता था। जब गौ पूर्णिमा के दिन जब गुरु महाराज हरिनाम दीक्षा देते थे, पहले मुझे बुलाते थे, वैसे महाराज क्या कर रहे हैं, हमारे पास भी जाना है। पहले मैं समझता नहीं था क्यों कि आके प्रणाम गुरु महाराज हमारे को आचार लगा के प्रणाम करते, महाराज जी नीचे उतर के प्रणाम करते दोनों। बताया महाराज जी, मैं पाप करके जा रहा हूँ, मुझे आदेश दें। तो ये दूसरी साल भी महाराज गुरु महाराज जी ने बुलाया से कब, बोले महाराज जी देख गया फिर मैं आऊंगा। मैं गुरु ने बताया, गुरु महाराज जी आपका आचार्य आपको जाने की क्या जरूरत, मैं महाराज बुला के लाता हूँ। बोले हमें तू नहीं समझता, जो बोलता वो करो, मुझे पूछना मत। बोले आज मेरे जाने के दिन है, मुझे आने के दिन नहीं है, जब जरूरत अभी आते हैं जब मैं ही जाता हूँ। ये स्पेशल दिन है, उनको मुझे कृपा चाहिए, मुझे जाना है। और गुरु महाराज जी प्रवचन के समय और समय भी बोलते थे कि श्रुति वस्परे स्मृति मितरे भारत मन्ये भजन्तु भविता अहम् यन्नन्दं वन्दे यस्कालिन्दे परं ब्रह्म। नंद महाराज बहुत गुणगान करते थे। मैं पूछा कि गोपियों वैष्णव मंत्र सब जीवन किशोर की सेवा करना चाहते हैं विभूषण कालिदास में, कहा कैसे नंद वंदे अहम् यन्नन्दं क्यों अधिकार बोलते हैं? जब तक नंद बाबा जसवानंद कृपा न हो तब तक मधुर से प्रवेश नहीं होगा। बात्सल रस मधुर रस को बहुत प्रकार से पुष्टि करती है। देखो जब राधा जी बस्ती वाले जाती कहा जाती है, नंदोबा जाती है ना, तो उसमें इसे पुष्टिया ऐसे और बहुत व्याख्या किया था और बताया था। समम एव परम रूपम पूरी मधु पूरी वरा भया को आप करोड़ सब। इसको याद रखना, इसी श्लोक के अंदर समस्त सिद्धांत छिपा हुआ है। उस समय समझता नहीं था, गोविंद महाराज बता रहे थे, दोनों ये बात बहुत बोलते थे। हम लोग इसको समझ सके बड़े साथ हम सब शास्त्र हैं दो चीज बोलने का आदि भक्त लोग हैं बोलेंगे, और सबसे तो सबसे बड़ी बात होगी हम महाराज के सिंह से सुने, तो जो महाराज ने सदगुरु ने बहुत जी जिताया उनके सिंह सुनने से हम लोग का परम कल्याण है। एक गल करके भक्त समाप्त करता हूँ।
इसको समय अधिक चाहिए, 10 बजे हम बैठेंगे, सब लोग 10 बजे आएंगे, ऑल शुड कम एट 10 एंड देन सम अदर कथा भी दे। उस समय एक बेसी समय दीजिए, फिर विकम महाराज से संबंधे बोलबे, पूज्यपाद बामन महाराज संबंध तुम्हें शंकर के कुछ बोल।
सबसे पहले
अस्मदीय गुरुपाद पद्म ऋतुलाभ कृष्णपाद अष्टोत्तर सचिव श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीमान जस्वी महाराज तथा विष्णुपाद परिप्राजाचार्य त्रिगंडी स्वामी श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वी महाराज के अभय चरण पवन में अनंत कोटि शास्त्र धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तदनंत सनास वृंद मातृवृंद गोस्वत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु भक्त वृंद भक्ति चरण पवन में मेरा यथा स्वरण मुझे प्रणाम स्थान और जिस विवाह पावन विवाह पर लोग उपस्थित हुए हैं ये सभी पावन करें विवाह का चीज विश्वास है अश्वनी कृपाद पद्म और तथा नेत्र विश्वास अश्वत्थ सुराव त्रिविक्रम महाराज की त्योहार की चीज है जिसपे हम लोग आए हैं। उनकी जीवन चरित्र और शिक्षा की कुछ स्मरण करने के लिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में ही सुंदर एक श्लोक बताया गया कि परस्परानु कथनम जब भक्त लोग एकत्रित होते हैं तब परस्पर स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं। अभी अभी श्री महाराज जी तथा अपने जैसे गुरु भ्राता ने गुरु महाराज के अतिमत्त जीवन चरित्र तथा शिक्षाएं अपने अनुभूति के सब हमको स्मरण कराया। मैंने गुरु महाराज जी के सानिध्य उनकी सेवा से अधिक कुछ प्राप्त नहीं किया क्योंकि उस दिन अवधिक के बाद इसलिए महाराज जी कृपा करके अपने चरणपुर में स्थान दिया था मथुरा मठ में चलाया और फिर महाराज जी के साथ ही वह जाते थे नवदीप परिक्रमा और नवदीप परिक्रमा के उपरांत महाराज के साथ ही चले आते थे अर्थात नवदीप में केवल ज्यादा से ज्यादा पांच दिन से अधिक अथवा सात दिन से अधिक नहीं रहता था और गुरु महाराज जी के सानिध्य और उनकी मुखारविंद से हरिकथा श्रवण उतना ही दिन तक जब तक परिक्रमा आदि चलते रहता है उतना ही समय तक गुरु महाराज जी भ्रमण करते करते कभी कभी गुरु वैष्णव के सम्मुख हो जाता है। दुर्लभ मानसो देही देहांतर उम्र तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन वैकुंठ जाने भगवत भक्त के सानिध्य असुंदर प्रसन्न है। ऐसे दुर्लभ की भी हम लोग प्राप्त किया था और श्री महाराज श्री गुरुदेव ने यही आदेश दिया था ये सदा सर्वदा महाराज जी के चरण सानिध्य में रहकर के उनसे शिक्षा आदि सब कुछ प्राप्त करें। श्री गुरुदेव ने यही बताया था देखो जैसे जैसे आदि मेरे पूर्वोक्ति भक्ता ने बताया था जी मुझसे और श्री महाराज जी से कभी भेद मत दर्शन करना कभी कभी मन में भी ये आक्षेप गुरुदेव के ऊपर प्रकट करता था गुरुदेव आपसे दीक्षा लिया किंतु आपसे हरिकथा सुनने के लिए कोई सुझोग नहीं मिला क्योंकि शास्त्र में कहा गया आदु गुरु मुखा हरिकथा श्रवण पहले गुरु जी के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करनी चाहिए किंतु आपसे तो श्रवण नहीं किया। उसमें गुरुदेव ने एक ही बात को बताया था जो आज तक हृदय में वही है चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक में कहते हैं दीक्षा गुरु के जन्म तुम्हें ताहर रूप शिक्षा गुरु के जन्म तुम्हें ताहर स्वरूप अंतरंग भक्त श्रेष्ठ यही दुई गुरु दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद मत करना गुरु के यही उपदेश अर्थात गुरुदेव सदा सर्वदा यही कहते थे जिसमें महाराज जी के साथ हमें कोई भेद मत करना मेरी कथा ही मानो उनकी कथा और उनकी कथा ही मेरी कथा है उनसे जो कुछ श्रवण उन्हीं में और हम लोग देखा है गुरु गुरुदेव किस प्रकार महाराज के सम्मान नहीं देते थे मैं गुरु महाराज के जीवन चरित्र का पाठ तो कुछ भी है सत्य महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया विशेष करके गुरु महाराज के आविर्भाव तिथि के समय श्री महाराज जी कदम गुरु के क्या समझोगे
मैं तुम्हारे गुरु जी के साथ 50-60 का प्रसंग किया, तुम्हारे गुरु जी के बारे में मैं बोलता हूँ, मेरे गुरु जी जो है वही बताता हूँ। श्री गुरु महाराज जी के अभिमत जीवन चरित्र का बता देते, ये वैष्णव के 26 गुण, जैसे अभी माधुर्य कलम में श्री महाराज जी वर्णन कर लिए, वर्णन कर रहे थे, ये वैष्णव के 26 गुण जो है वो 26 गुण में 26 गुण ही उसमें जो गुरु पाद पद में विद्यमान था, कृपा जो सबको समझ प्रदान हो, ये समझ जो गुरु महाराज जी के गुण कर दिए। श्री महाराज जी कहते थे तुम्हारे गुरुदेव के नाम की सुनी सुन करके एक मूर्त बुद्धि है। श्री महाराज जी कहते थे मैं जीवन में एक गुरु भाव करके देखा, हमारे गुरु महाराज एक समय थोड़ी शांति बात की बात है 96 और उस समय एक ईश्वर के लिए आए थे, अस्सी लोग गुरु महाराज के पास बैठे और गुरु महाराज के बोले ये आपकी महाराज के नाम लेकर बोले विदेश में जाते हैं और हमारे गुरुपाद की और शिष्यों के कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं, आप गुरु वेदांत सरस्वती के आचार्य है और आप उनसे कुछ बात बताइए जैसे डिस्टर्बेंस ना करें। गुरु महाराज जी इतने सुनते गुरु महाराज कर गए हरे कृष्ण, दो बार तीन बार जो गुरुदेव ने कहा हरे कृष्ण, फिर वो व्यक्ति गुरु महाराज जी कांग्रेस से भगे गए। तब गुरु महाराज जी बहुत देर करके यह बताया, देखो जब तक भी मैं गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य हूं प्रेसिडेंट हूं, तथा हमारे गौड़ीय वेदांत के सारे अधिकार और जो कुछ भी है सब सेक्रेटरी के ऊपर दे दिया, आप एक काम कीजिए सेक्रेटरी के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए। और गुरुदेव कहने हरे कृष्ण, इसको निंदा गुरुदेव कभी नहीं सुनते थे, वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र जी नित्य ही से डाल भक्ति विनोद नासम से सारे सदा रहे मोहन करें। गुरु महाराज के जीवन में हम लोग यही देखा और वही ईश्वर के लिए बाहर आ गए और बाहर आकर के वो काठन प्रथम जो पेड़ था और उसके नीचे और मधुसूदन महाराज कृष्ण कृपा प्रभु वो क्या कर झाड़ू दे रहे थे दर्शन कार्य कर रहे और उनके पूछा ये आपके गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी कौन है, देखो वो नाथ मंदिर गए ना अभी प्रवचन देने के लिए वही गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी उसके बारे में मैडम तो बस यही करते हैं बस बड़े उसके बारे में मुख्य मैं बोलना चाहता था और ऐसे करके वो चले गए और आए थे। इसी प्रकार गुरु महाराज अमानी मानव मैंने अपने देखा साक्षात में देखा जैसे कुशोक्ति बात ने बताया गुरु महाराज सब समय बोलते थे श्री महाराज जी मेरा गाभीर शब्द व्यवहार करते थे, मेरा अभिभावक जो है जो कुछ है श्री महाराज जी और आमंत्री गोविंद वेदांत समिति से जितने सीनियर ग्रंथ सन्यासी ग्रंथ ये मुखार से श्रवण किया था जे गोविंद वेदांत समिति के समिति में तीन भाई ब्रह्म विष्णु और महेश्वर जिस साथ में कहते ना कहते गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव अर्थ ब्रह्म तस्मिन श्री गुरु मायावाद नहीं और अद्वैतवादी लोग अपनी व्याख्या करते हैं किंतु इसमें देखा पड़ता है गुरुदेव वो ब्रह्म के शब्द है, जैसे ब्रह्म शिष्य के कार्य है उसी प्रकार गुरु पाद शिष्य के हृदय में मन प्रत्येक आदि दे करके उनकी भक्ति लता बीच में उन्मृत करा दे एक ब्रह्म के कार्य है, मेरे गुरुपाद गुरुदेव के कार्य थे एक ब्रह्म और शिव जी के कार्य क्या है ध्वंस करना संहार करना और इसे त्रिविक्रम महाराज जी कहते हैं ये शिव शिव के भांति संहार कर रहे थोड़ी सी किसी ने भी कुछ देखे और उन्होंने बहुत शासन करते थे इसलिए उनके गोरे विधान उनको कहते थे एक शिव जी के शिव जी का और शिव महाराज जी क्या करते नारायण क्या करते और वो सबके पालन पोषण करते श्री गुरुदेव श्री महाराज जी सत्यम के पालन पोषण करते हैं जैसे नारायण संत जीवों के पालन पोषण करते हैं श्री महाराज जी हरि कथा श्रवण करके और अमृत के हृदय में शुद्ध भक्ति देखते और पालन पोषण करते श्री गुरुदेव करते थे, जो कुछ भी कुछ हो जाए सब महाराज जी पर प्रेरण करते थे। कोई दीक्षा में ही अपने जीवन की अनुभूति बता रहा हूँ। दीक्षा के समय हम लोग 2100-150 व्यक्ति थे, नवदीप कोई क्रम के समय ग्रंथ ब्रह्मचारी साहब हम लोग गुरु महाराज के पास कमरे में गए। दीक्षा लेने के समय गुरुदेव ने कहा पहले नारा मंच के आदेश, उनके आदेश बिना मैं किसी को दीक्षा नहीं दे सकता। तो आचार जो है तथापि कभी अपने जीवन में ये अनुमान नहीं रखते थे मैं आचार को सब कुछ जो भाग है सब कुछ महाराज के ऊपर देते थे। और उन्होंने क्या करते थे और ये उपदेश देते थे, उनके आदेश पालन करो, उनके ही जो कुछ है वही सत्य है। इसलिए गुरु महाराज जी मैंने देखा जब श्री महाराज जी मथुरा से नवदीप लौट देते गुरु महाराज श्री महाराज जी किस प्रकार आदर स्नेह आदि और उनके सम्मान करते थे। ये गुरु भ्रष्ट के प्रति ऐसे आदर स्नेह और सम्मान आज तक किसी मन में किसी में हम लोग नहीं देखते। मैंने देखा साक्षात गुरुदेव सत्य धन्यवाद प्रणाम करते थे महाराज जी जब नवनीकरण से जब प्रवेश करते थे श्री महाराज जी और उस समय गुरु महाराज जी वाराणसी निकल करके आते थे उस समय और आगे सत्संग धन्यवाद करते थे। ये सब देखने के सुनने को मिला वैष्णव के किस प्रकार व्यवहार, ये सब वैष्णव के व्यवहार हम लोग देखते जब जीवन में शिक्षा देते हैं वैष्णव के किस प्रकार जैसे तो कुछ साल पहले गुरुदेव ने और टीकाई में तो एक श्लोक एक भक्त ठाकुर कीर्तन व्याख्या करे थे वैष्णव देखिया चरणे कोई वो हृदय रो बंधु जानी। वैष्णव देख करके मैं साक्षात धन्यवाद करेंगे और अभी तो हृदय में मित्र जानेंगे। गुरुदेव जब श्री महाराज जी जब टीकाई में इसी सप्तम के व्याख्या करे थे मैंने देखा महाराज के हृदय में कैसे कैसे पुनः आदि ये सब भाव में देखा और वही चिंतन करने लगा। ये आज से कम से 20-22 साल पहले श्री महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी की कैसे आदर करते थे। गुरु महाराज जी और श्री महाराज जी जब एकत्रित होते थे उनकी उनकी आराध आलोचना उनकी क्रिया आदि ये सब अलौकिक है। ये समस्त सिद्धांत यह कभी 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 कहते थे गुरु महाराज जी हास्य परिहास करते श्री महाराज जी हास्य परिहास करके गुरुदेव जी कहते थे आप बैठक बच्चा पैदा करते हो और मैं बच्चे के काटती हाथ करता हूं। देखो गुरु वैष्णव से कैसे कहा जाता है प्रेम सुंदर भाषा है प्रेम है। गुरु महाराज जी हंसते थे श्री महाराज जी इस प्रकार त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे बात बोलते थे। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे जब पहले पहले जब गुरुदेव के लिए श्री महाराज जी साथ त्रिविक्रम के साथ महाराज साहब मिलते थे कभी लगते थे झगड़ा चल रहे हैं किंतु वास्तव नहीं है कितना प्रेम शरीर सौहृद भाव गुरु भ्राता के प्रति ऐसे सौहृद भाव हो रहे थे तब तो वैष्णव होता है। इसलिए कृष्ण महाराज जी अपने प्रवचन में कहा था ये जब तक श्री गुरुदेव और महाराज जी जब तक रहे तब तक गौरी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सिर ऊंचा करके कुछ बोले। गुरुदेव हमें अपने गुरुदेव के उदाहरण से गुरुदेव को देखा जब गुरुदेव और श्री महाराज जी एक ही स्थान पर बैठते थे कृष्ण जी गौरी मठ में राधा सुनने के समय गुरुदेव श्री महाराज जी कहते थे महाराज आप बताइए गुरु महाराज जी आप उधर गए ना और दिन ही ऊपर बोले आप है आप है। बार बार बोले पर गुरु महाराज जी राधा सप्त बोलते थे केवल दो शब्द भक्त ठाकुर पर बोले बोलते थे क्या राधा अमित राधा तप्त पाती सदाजन सेजन भजे अमित राधिकार पक्त पाती सदा
प्राय बोलते
हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज बोलते थे बस इतना ही समझो ज्यादा वस्तु के ऊपर नहीं बोलते थे क्योंकि अल्प भाषा में वितंत्र सारांश और इतने साथ संक्षेप में बोलते थे। अभी कभी वहां भी मैंने देखा गुरु महाराज के कुछ बोलते थे गुरुदेव और कुछ राधा तो बोलो अरे नहीं नहीं इसको छिपा करके रखना है। गुरुदेव और अल्प भाषा में भक्ति ठाकुर के कीर्तन की व्यक्त करके शक्तिशाली बोलते थे। आज गुरु महाराज की चरण कम और उनकी जो कुछ भी है जो कुछ साक्षात मूर्त जो कुछ भी प्रभा आप श्री महाराज के ही हृदय में महाराज के संत में सब कुछ हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आज महाराज ने हमने पास बात करें गुरुदेव हम लोग के पास बात करें ये जन्म जन्मांतर में उनकी सेवा करती है वंशा
এখন সময় হয়ে গেছে, নাও টাইম ইজ ওভার, অর্চন ইজ ডান, দেন আই উইল ডু আরতি আর ইসকে বাদ মে আরতি হোনে কে বাদ মে পুষ্পাঞ্জলি দেঙ্গে এন্ড আই রিকোয়েস্ট ইউ অল টু কম এট 10. There are so many bhakta. Bahut se bhakta achen. Vishesh kare Pujya Patra Vikram Maharaj sambandhe kuch bola hai nahi. Unar sambandhe bola hobe. Atev sab log 10ta samay avashya ashe. I request you all to come at 10 and hear Harikatha. Go.